प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। न्यू साउथ वेल्स के स्नोवी माउंटेन्स में एक लापता स्कीयर की तलाश जारी। मेलबर्न में एक विवादास्पद भित्ति चित्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद मिटाया गया। और टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यूएस ओपन की दौड़ में तेज। अब समाचार विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स के स्नोई माउंटेन्स में लापता स्कीयर की तलाश तेज हो गई है क्योंकि पुलिस हेलीकॉप्टर बचाव दल में शामिल हो गए हैं। 23 वर्षीय व्यक्ति ने आखिरी बार शनिवार की सुबह अपने परिवार के साथ संपर्क किया था, जो कि कोजियास्को नेशनल पार्क के पश्चिम प्रदेश में स्की करने के लिए निकला था। अल्पाइन ऑपरेशंस यूनिट, स्टेट इमरजेंसी सर्विस और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सर्विस की स्पेशलिस्ट पुलिस अब इस इलाके में तलाशी ले रही हैं। मोनारो पुलिस जिला कमांडर अधीक्षक जॉन क्लेब्जारेक का कहना है कि खोज सूर्यास्त तक जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि अप्रत्याशित मौसम की स्थिति के कारण तलाश पहले बंद हो सकती है।
On the positive side, he is an experienced outback skier. He has experience both here and overseas, so he is well equipped and has stayed overnight before. However, the family and friends expected him to make contact and definitely be back by now. So as a result, there are concerns.
Melbourne के एक भित्ति चित्र यानी mural में यूक्रेन के एक सैनिक को एक रूसी सैनिक गले लगाते हुए दिखाया गया था। इस पर ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के राजदूत सहित सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद उसे अभी मिटा दिया गया है। कलाकार पीटर सीटन ने मेलबर्न के सीबीडी में अपने चित्र को पूरा करने के कुछ ही दिनों बाद उसे पीस बिफोर पीसेस शीर्षक दिया है। यूक्रेनी राजदूत वसिल मिरोशिनिशेंको ने कलाकृति को हटाने की मांग करते हुए कहा कि इसने पीड़ित और हमलावर के बीच झूठी समानता बनाई और ये चित्र सभी यूक्रेनियन लोगों के लिए आक्रामक था। श्री सीटन ने SBS को बताया कि उनके काम का उद्देश्य कभी भी किसी को दुखाना नहीं था।
My intention was really to put the message of peace out and peace, and that we're all in this planet together. And yeah, I do apologize to those refugees, and I didn't mean to be traumatizing. I really thought I was doing the right thing by their brothers and sisters who are dying.
कनाडा के अधिकारी सस्केचवन में छुरा खोपने के संदेह में दो लोगों से खुद को पुलिस को सौंपने का आग्रह कर रहे हैं। इन व्यक्तियों ने कम आबादी वाले इंडिजीनियस समुदाय में हमले किए, जिसमें 10 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। 13 अपराध दृश्यों में छुरा खोपना आधुनिक कैनेडाई इतिहास में सबसे घातक सामूहिक हत्याओं में से एक है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की सहायक आयुक्त रोंडा ब्लैकमोर ने संदिग्धों की पहचान की है।
The two suspects are Damian Sanderson and Miles Sanderson. Their pictures are available on social media channels and websites. If Damian and Miles are listening or receive this information, I would ask that they turn themselves into police immediately. They are considered armed and dangerous.
फेडरल सरकार ने तालिबान से लड़कियों सहित सभी छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने का आह्वान किया है, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव सीनेट में पेश किया गया था। प्रस्ताव अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय संकट का जवाब देना जारी रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता को सूचित करता है। अफगान शरणार्थी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर फातिमा पेमन कहती हैं कि तालिबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया जा रहा है।
It is heartbreaking, and my sincerest thoughts go out to everyone with family and friends in Afghanistan going through this ongoing devastation, and to the veterans and their loved ones scarred by the pain and trauma. I wish upon you healing and closure.
सीनेटर पेमन ने भी तालिबान से आह्वान किया है कि वे अफगानिस्तान को आतंकवादी तैयार होने की जगह न बनने दे। सरकार ने पुष्टि की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की समीक्षा कर रही हैं। गृह विभाग टिकटॉक, वीचैट और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों की समीक्षा करेगा और अगले साल मंत्री को उनकी डेटा संग्रह नीतियों के बारे में जानकारी देगा। विपक्ष ने जांच का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार को ऑस्ट्रेलिया में कंपनी पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। लिबरल सेनेटर जेम्स पैटरसन का कहना है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित विदेशी हस्तक्षेप से निपटने के लिए कार्यवाही का आह्वान करते रहे हैं।
The Chinese government system is a very opaque system. It is not transparent to the outside. And we just don't know how the app companies are handling this data, whether or not and in what quantities they are passing it on to Chinese intelligence agencies. All that we know is that they are required by law to cooperate secretly with Chinese intelligence agencies if they're asked to do so. And that poses very real risk to our national security.
7 million से अधिक ऑस्ट्रेलियाई इस चीनी कंपनी के ऐप टिकटॉक का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय बाल आयुक्त का कहना है कि सरकार हिरासत में लिए गए युवाओं की सुरक्षा और देखरेख करने में विफल रही है। एन हॉलैंड्स ने बाल संरक्षण सप्ताह को चिन्हित करने के लिए कैनबेरा में गवर्नमेंट हाउस में बात की। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में युवाओं को हिरासत में लेने के बाद और पूछताछ में फिलहाल कई मुद्दों का खुलासा किया जा रहा है, जिसमें सुविधाओं के अंदर व्यापक दुरुपयोग और हमले के सबूत हैं। कमिश्नर हॉलैंड्स का कहना है कि बच्चों और उनके परिवारों को दशकों से निराश किया गया है, रॉयल कमीशन और पूछताछ की प्रमुख सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है।
20 suicide attempts and 285 occasions of self-harm in the first 6 months of this year alone in the Banksia Hill Youth Detention Centre in WA. These children have been frequently locked down in isolation in their cells for more than 22 hours per day, deprived of education, recreation and rehabilitation. While Banksia Hill requires urgent intervention, it's sadly not isolated. 5 years on from the Northern Territory Royal Commission, the serious problems in youth justice systems continue right across Australia.
ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सा नेताओं का कहना है कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली कार्बन उत्सर्जन के 7% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। 40 से अधिक स्वास्थ्य समूहों ने इन स्वास्थ्य संबंधी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन योजना जारी की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे पैसे की बचत होगी और पेशेंट्स की देखभाल में सुधार होगा। क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस में सस्टेनेबल हेल्थ केयर मैनेजर स्टेफनी कैरिनो कहती हैं कि इसका समाधान अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना है।
Hospital surgeries and clinics use huge amounts of energy and produce mountains of waste each year. We can improve this right now by sourcing energy from renewable sources, electrifying transport fleets, expanding telehealth, decarbonizing the supply chain and putting in place waste and water management strategies.
कंजर्वेटिव पार्टी की कड़वी प्रतियोगिता के बाद ब्रिटेन अपने अगले नेता की घोषणा करने के लिए तैयार है। सुश्री ट्रस अपेक्षित विजेता हैं, जो 6 वर्षों में टोरीज की चौथी नेता बन गई हैं। पिछले सप्ताह 2 महीने की प्रतियोगिता में मतदान बंद हुआ। लंदन में आज दोपहर 12:30 बजे परिणाम घोषित होंगे और विजेता मंगलवार 6 सितंबर से सत्ता संभालेगा। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 68 सेंट है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.22 रुपए हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। टेनिस में ऑस्ट्रेलिया का यूएस ओपन में अब तक का दौर सफल रहा है, जिसमें निक किरियोस और आयला टोमियानोविच दोनों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डैनियल मेडवेदेव के खिलाफ किरियोस के मैच ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जब किरियोस ने तीसरे सेट के रूस के पहले सर्विस गेम में 30-30 पर फाउल शॉट किया। नेट पर मेडवेदेव का शॉट पॉपअप होने और चेयर अंपायर के पास कोर्ट से बाहर उतरने के लिए तैयार होने के बाद किरियोस बेवजह कोर्ट के अपने प्रतिद्वंदी की तरफ भागे और गेंद को स्मैश किया। मैच के बाद अपने साक्षात्कार में किरियोस ने स्वीकार किया कि शॉट एक ब्रेक पॉइंट होना चाहिए था।
I still can't believe the boneheaded play I made over here. I thought that was legal, to be honest, but that's going to be everywhere on SportsCenter, so I'm going to look like an idiot. So that's all right.
इस बीच टोमियानोविच ने सेरेना विलियम्स पर तीसरे दौर की जीत के ठीक 2 दिन बाद लडमिला सैमसोनोवा को सीधे सेटों में जीत से बाहर कर दिया। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश हो सकती है और वहाँ का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहाँ का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में भी ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा 5 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री। कैनबेरा में आंशिक बादल रहेंगे और वहाँ का न्यूनतम तापमान 0 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में बारिश कम होती जाएगी और वहाँ का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहाँ का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में धूप खिली रहेगी और वहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री। और वहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहाँ का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।